समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो।
दोस्तों, लगातार आगे बढ़ती पल पल रंग बदलती जिंदगी की सुहानी सुबह को कुछ और पुरसुकून और यादगार बनाने के लिए आ गए हम लेकर आज सवेरे का ये अंक एफएम गोल्ड पर। दोस्तों, मनोरंजन और जानकारियों भरे सफर में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कार्यक्रम में हम आपको देंगे देश और दुनिया के समाचार, फिर महानगरों का जानेंगे हाल, बात होगी मौसम के मिजाज की, इतिहास में दर्ज कुछ घटनाओं का होगा जिक्र है जिनका रिश्ता आज की इस तारीख से, और हम याद करेंगे कुछ ऐसी हस्तियों को है जिनका आज जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि। दोस्तों, आज इस जानकारियों और मनोरंजन भरे सफर में आपका हम सफर हूं मैं मुनीश शर्मा, अपनी सहयोगी नीना अरकल के साथ। नमस्कार नीना।
नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम मुनीश, ऑल्सो अ प्लेजेंट वेलकम टू ऑल आर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेर इन वी शेयर द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज 17th of March।
तो आई नीना, अब नजर डालते हैं सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचारों पर।
एटलीस्ट 400 पीपल हैव बीन किल्ड एंड अराउंड 250 इंजर्ड इन अ पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक एट अ हॉस्पिटल इन अफगान कैपिटल काबुल लास्ट नाइट। तालिबान गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन जबीहुल्ला मुजाहिद सेड दैट अ लार्ज सेक्शन ऑफ द हॉस्पिटल हैज बीन डिस्ट्रॉयड इन द पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक एंड द नंबर ऑफ कैजुअल्टीज में इंक्रीज। ही सेड पाकिस्तानी मिलिट्री रेजीम हैज वंस अगेन वायोलेटेड अफगानिस्तान्स एयर स्पेस एंड टारगेटेड अ ड्रग रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल इन काबुल, रिजल्टिंग इन द डेथ एंड इंजरी ऑफ एडिक्स हु वर अंडरगोइंग ट्रीटमेंट। द अटैक केम आवर्स आफ्टर अफगान officials said the two sides exchanged fire along their common border. UN Special Rapporteur for Human Rights for Afghanistan, Richard Bennett, has expressed concern over civilian casualties in the attack on the hospital. The International Human Rights Foundation has also condemned the attack, saying that public places such as hospitals should not be targeted. The situation in Kabul has been tense as residents report continued aircraft activity over the city. The Pakistani military has struck Kabul several times in recent weeks, causing heavy civilian casualties.
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल, स्लोवाकिया के विदेश मंत्री जोराज ब्लानार, ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गैरा पैट्रिटिस और नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बैरनसेन से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच बैठक के दौरान पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर महत्वपूर्ण विचार विमर्श हुआ है। स्लोवाकिया के विदेश मंत्री के साथ बैठक में विनिर्माण, रक्षा, अंतरिक्ष सहित द्विपक्षीय एजेंडे पर भी चर्चा हुई। ग्रीस के विदेश मंत्री के साथ हुई बातचीत में राजनयिक उपस्थिति को बढ़ाने, संपर्क मजबूत करने और व्यापार को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। वहीं डॉ जयशंकर ने नीदरलैंड के विदेश मंत्री टॉम बैरनसेन को उनकी हालिया नियुक्ति पर बधाई भी दी है, और साथ ही दोनों पक्षों ने सेमीकंडक्टर, एआई, जल प्रबंधन और अन्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है।
इंडियन एम्बेसी इन ईरान हैज स्ट्रिक्टली एडवाइज्ड इंडियन नेशनल्स करंटली इन ईरान टू नॉट अप्रोच और अटेम्प्ट टू क्रॉस एनी लैंड बॉर्डर ऑफ ईरान फॉर ऑनवर्ड ट्रैवल विदाउट प्रायर एंड एक्सप्लिसिट coordination with the Indian embassy in Tehran. In the advisory, the embassy said that the Indian nationals who attempt to leave Iran via land borders without the knowledge and guidance of the embassy are highly likely to encounter serious logistical and immigration difficulties. It strongly discouraged uncoordinated movement toward land borders. The embassy noted that it will not be in a position to provide assistance once individuals move outside Iranian territory without prior coordination.
भारतीय जनता पार्टी के संजय भाटिया और कांग्रेस पार्टी के करमवीर सिंह बौद्ध हरियाणा में राज्यसभा की दो सीटों के लिए निर्वाचित घोषित किए गए हैं। दो सीटों के लिए कल मतदान हुआ था। अधिकारियों ने बताया कि अवैध घोषित किए गए 5 मतदानों में 4 कांग्रेस के मतदान और 1 भाजपा का मत शामिल है। 9 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के सदस्य किरण चौधरी और रामचंद्रन जांगड़ा का कार्यकाल पूरा होने से हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं।
In badminton, senior player Kidambi Srikanth and youngsters Ayush Shetty and Tanvi Sharma will lead India's challenge at the Orleans Masters Super 300 tournament beginning at Palais des Sports in France today. Tarun Manapalli and world number 42 Kiran George are also part of India's men's singles lineup. In women's singles, Tanvi Sharma is a 3-time runner-up at BWF World Tour events and is searching for her title on the circuit. H.S. Pranoy withdrew after experiencing shoulder pain during the Swiss Open in Basel last week, while Lakshya Sen will also not feature in Orleans. 2-time Olympic medalist P.V. Sindhu will also skip the Super 300 meet. In mixed doubles, Tanisha Krasto will partner Dhruv Kapila, while Rohan Kapoor and Ruthvika Shivani Gadde will form the other Indian pair. India's men's doubles challenge will be led by Hariharan, Amsa Karunan and M.R. Arjun in the absence of Asian Games champions Chirag Shetty and Sathvik Sairaj Ranki Reddy.
राष्ट्रपति भवन में स्थित अमृत उद्यान आज विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए खोल दिया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि इसका आयोजन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों, दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान, अनुग्रह क्षेत्रीय संसाधन प्रशिक्षण केंद्र और ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सहयोग से किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का आयोजन वरिष्ठ नागरिकों को अमृत उद्यान की सुंदरता का अनुभव कराने और सामाजिक तथा मनोरंजक गतिविधियों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। और दोस्तों, अब हम रुख करते हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अन्य महानगरों की खबरों की तरफ। सबसे पहले बात दिल्ली की। साहित्य अकादमी ने 24 भारतीय भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की है। ये पुरस्कार प्रतिष्ठित निर्णायक मंडल द्वारा सुझाए गए उम्मीदवारों को साहित्य अकादमी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मंजूरी के बाद दिए जा रहे हैं। ये पुरस्कार इस महीने 31 तारीख को नई दिल्ली में प्रदान किए जाएंगे। राजधानी में उत्तर रेलवे क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अपर महाप्रबंधक हरीश खरे ने कहा कि राजभाषा में काम करते समय सहज और सरल शब्दों का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने विभागीय निरीक्षण के दौरान राजभाषा की प्रगति का निरीक्षण करें और अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख जरूर करें। इसके अतिरिक्त मुख्य राजभाषा अधिकारी शिल्पी अग्रवाल ने भी यह अनुरोध किया कि आइए सभी हिंदी में काम करें और अपने अधीनस्थों को भी हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित करें। दिल्ली में ही शुक्रवार को रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा पूर्व सैनिकों के लिए एक रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मंत्रालय ने कहा है कि रोजगार मेला भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के पूर्व सैनिकों को कॉरपोरेट और उद्योग जगत के प्रमुख नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए एक खास तरह के मंच के तौर पर काम करेगा।
एंड मनीष, लेट्स मूव ऑन टू चेन्नई नाउ। 4 IPS officers in Tamil Nadu have been transferred as ordered by the Election Commission of India. According to the order, additional Chief Secretary Dheeraj Kumar transferred Greater Chennai Police Deputy Commissioners D.N. Hari, Sujit Kumar and N. Srinatha and posted them as SPs of Karur, Nagapattinam and Vridhunagar respectively. D.V. Kiran Shruti from the Anti-Terrorism Squad headquarters in Chennai has been posted as SP of Erode. Nomination for the upcoming election can be filed for 5 days between 30th of March to 6th of April. The CEO of Tamil Nadu, Archana Patnaik, said that scrutiny will be held on 7th of April and the last date for withdrawal is 9th of April. Polling will be on 23rd of April, while the counting of votes will take place on 4th of May.
और आइए अब चलते हैं मुंबई, जहां महाराष्ट्र विधानसभा ने कल रात ध्वनिमत से धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। इसमें जबरन, धोखाधड़ी, प्रलोभन या शादी के माध्यम से कराए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। विधेयक के अनुसार विवाह के बहाने गैर कानूनी धर्मांतरण में शामिल लोगों को 7 साल तक की कैद और 1 लाख रूपये का जुर्माना हो सकता है। नाबालिग, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, महिला या अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति के संबंध में उल्लंघन करने पर 7 साल की कैद और 5 लाख रूपये का जुर्माना होगा। सामूहिक धर्मांतरण के लिए 7 साल की कैद और 5 लाख जुर्माना होगा और विधेयक के अनुसार बार बार ये अपराध करने वालों को 10 साल तक की कैद और 5 लाख रूपये तक का जुर्माना भी हो सकता है। और मुंबई में ही महाराष्ट्र की बात हुई, महाराष्ट्र राज्य की चूंकि राजधानी है मुंबई और सबसे अधिक विदेशी निवेश को वो आकर्षित करती है और देश की आर्थिक ताकत होने के साथ साथ एक स्टार्टअप राजधानी के तौर पर जानी जाती है। ये कहते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ब्रिटिश निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया। मुंबई में बर्मिंघम के सांसद लियाम बायर्न के नेतृत्व में ब्रिटिश सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान श्री फडणवीस ने भारत और ब्रिटेन के प्रमुख शहरों के बीच समानताएं बताई। उन्होंने कहा कि लंदन और मुंबई में आर्थिक विकास की समान क्षमता है, जबकि पुणे और बर्मिंघम ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए अतुल्य अवसर प्रदान करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की खुली शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए गैर लाभकारी संगठन एजुकेट गर्ल्स के साथ साझेदारी की है। एजुकेट गर्ल्स रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता एक संगठन है और एशिया भर में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के अपने कामों के लिए मान्यता प्राप्त है। इस बारे में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसका उद्देश्य उन विद्यार्थियों के लिए लचीले शिक्षण का मार्ग तैयार करना है जिनकी शिक्षा बाधित हुई है।
न्यूज फ्रॉम बेंगलुरु। द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज क्लियर्ड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम इन बेंगलुरु टू होस्ट मैचेस ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग 2026 आफ्टर अ मल्टी डिपार्टमेंट एक्सपर्ट कमेटी कन्फर्म्ड दैट द स्टेडियम हैज कम्प्लीटेड द रिक्वायर्ड अपग्रेड्स। द वेन्यू विल होस्ट इट्स फर्स्ट मेजर मैच आफ्टर अ 10-month ब्रेक ऑन 28th ऑफ मार्च व्हेन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बिगिन देयर टाइटल डिफेंडिंग कैंपेन अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद इन द सीजन ओपनर। Despite sustained awareness campaigns by the centre, investigating agencies, state police, the IT department and the Media Karnataka has lost 11.6 crore rupees to digital arrest fraud in the first 59 days of 2026 with an average of 19.6 lakh rupees per day. According to data from the State Home Department, only 25.2 lakh rupees, which is about 2.2% of the defrauded amount, has been recovered so far. Officials say the figures highlight how cyber criminals continue to outpace enforcement efforts.
और अब बात कोलकाता की नीना, जहां पश्चिम बंगाल के प्रख्यात कवि प्रसून बंदोपाध्याय को उनकी पुस्तक श्रेष्ठ कविता के लिए वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। 1970 के दशक में साहित्य जगत में उभरे बंदोपाध्याय ने उस दौर की सामाजिक राजनीतिक टिप्पणियों को अपनी रचनाओं में पिरोकर एक विशिष्ट साहित्यिक शैली को विकसित किया। उन्होंने बालियो तरमुज नामक कविता संग्रह से अपने लेखन की शुरुआत की थी, जिसके बाद उन्होंने उत्तर कोलकाता कविता, उन्मेष, गोधुली, बंगिया, चतुर्दशपदी, आनंद भिकीरी और अभिसामय काली जैसी उल्लेखनीय रचनाएं भी प्रस्तुत की। घोषणा के बाद आकाशवाणी को दी एक साक्षात्कार में उन्होंने अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की।
मनीष, नाउ वी मूव ऑन टू हैदराबाद। Irrigation and Civil Supplies Minister N. Uttam Kumar Reddy unveiled an action plan to achieve a paddy procurement target of 90 lakh metric tons during the Rabi season, 60 LMT coarse and 30 LMT fine at the government fixed minimum support price, with paddy cultivation projected across 54.48 lakh acres, yielding an estimated 152.03 LMT, the Telangana State Civil Supplies Corporation has set up 8,251 paddy purchase centres operated by IKP, PACS and others. MSP rates for the Rabi season are fixed at 2,389 rupees per quintal for grade A and 2,369 rupees for common variety. The minister assured zero distress sales with full procurement of every grain. Adequate gunny bags, vehicles and godowns have been arranged for smooth operations. Weather vigilance measures include use of weather app for alerts, sheds for visiting farmers and ORS sachets at all centres to prevent sunstroke. Supervisory teams will monitor operations at the constituency, mandal and PPC levels.
और दोस्तों, आज सवेरे में अब बात महानगरों के मौसम की। राजधानी में आज आंशिक रूप से छाए रहेंगे बादल और वहीं आज का अधिकतम तापमान जो है दिल्ली में रह सकता है 33 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम जा सकता है 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास।
Chennai is expected to have a partly cloudy sky. The minimum temperature will be around 25 degrees Celsius and maximum will be around 35 degrees.
और मुंबई में दोस्तों आसमान रहेगा साफ, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम रह सकता है 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास।
बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ मेनली क्लियर स्काई, द मिनिमम टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड टू बी 20 डिग्री सेल्सियस एंड अ मैक्सिमम विल बी अराउंड 34 डिग्री।
और देखें अगर हम कोलकाता को, तो आसमान में दिखाई देते हैं कुछ छाए हुए बादल, हल्की बारिश होने की भी है संभावना। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रह सकता है 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास।
हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव रेन और थंडर शावर्स विद स्ट्रॉन्ग गस्टी विंड्स, द टेम्परेचर विल हावर बिटवीन मिनिमम ऑफ 22 डिग्री एंड अ मैक्सिमम ऑफ 36 डिग्री सेल्सियस।
तो दोस्तों, अगर इन महानगरों की यात्रा का जो है आपका कोई कार्यक्रम, तो रखिए ध्यान मौसम का। और अब बात करते हैं कुछ ऐसी घटनाओं की दोस्तों जो बनाती हैं आज की इस तारीख यानी 17 मार्च को बहुत ही खास। तो नीना, क्या याद आता है आपको 17 मार्च से जुड़ी हुई, क्या ऐसी घटना है जो कहती है कि ये दिन है विशेष?
Sure, Manish. In 1941, the National Gallery of Art opened in Washington, D.C.
जी हाँ, और अब मैं आपको सीधा ला रहा हूँ 1994 में, जब रूस द्वारा नाटो की एक शांति योजना, सहयोग योजना जो थी, उसमें शामिल होने का निर्णय लिया गया था।
In 1955, the Indian Standards Institution, ISI, began operations to control product quality.
और 1996 में लाहौर में संपन्न छठे विल्स विश्व कप का खिताब श्रीलंका ने जीता था ऑस्ट्रेलिया को हराकर इसी तारीख यानी 17 मार्च को।
In 1958, the first solar-powered satellite, Vanguard 1, was launched from Cape Canaveral in Florida.
और 2002 में इसी तारीख को हुई थी नेपाल में सुरक्षा बलों और माओवादियों की एक भीषण मुठभेड़ जिसमें 68 माओवादी मारे गए थे।
In 1959, the 14th Dalai Lama arrived in India from Tibet.
और 2008 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन केंद्र पर पहुंचे वैज्ञानिकों ने एक मशीनी मानव यानी रोबोट को भी तैनात किया था।
In 1969, 70-year-old Golda Meir makes history when she is elected as Israel's first female prime minister.
और दोस्तों, अब हम याद करते हैं कुछ ऐसी जानी मानी हस्तियों को है जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। दोस्तों, आज पुण्यतिथि है मनोहर पर्रिकर की, जिनका पूरा नाम था मनोहर गोपाल कृष्ण प्रभु पर्रिकर। चार बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे, भारत के रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के सांसद भी रहे। सन 1978 में आईआईटी मुंबई से, तत्कालीन बॉम्बे यानी से, उन्होंने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले मनोहर पर्रिकर ऐसे पहले व्यक्ति थे जो आईआईटी से स्नातक हों, और 2001 में आईआईटी मुंबई द्वारा विशिष्ट भूतपूर्व छात्र की उपाधि उन्हें दी गई। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर अपनी सादगी के लिए बेहद मशहूर रहे। सर्वोच्च पद पर होने के बावजूद अपने राज्य में वो अक्सर स्कूटर पर नजर आते थे और उनकी वेशभूषा बेहद साधारण हुआ करती थी। उन्हें हमारी हार्दिक श्रद्धांजलि।
Malvina Reynolds was an American folk singer, songwriter and political activist. Though she played violin in a dance band in her 20s, Reynolds began her songwriting career later in life. Reynolds claims that as soon as folk music came to the forefront, she knew it was for her. She is best known for the songwriting, particularly the songs Little Boxes, What Have They Done to the Rain and Morning Town Ride. In 1962, Reynolds composed her first famous song, Little Boxes, with Pete Seeger, made famous for the following year. Little Boxes was inspired visually by the houses of Daly City, California. Here's the song.
Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university, where they were put in boxes and they came out.
और दोस्तों, आज पुण्यतिथि है सिद्धेश्वरी देवी की। वे भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक प्रसिद्ध गायिका थीं। एक ऐसे जमाने में जब नृत्य और संगीत को समर्पित कलाकारों को जरा कुछ हेय दृष्टि से देखा जाता था, तब 8 अगस्त 1908 को जन्मी सिद्धेश्वरी देवी ने अपनी कला के माध्यम से भरपूर मान सम्मान अर्जित किया। निर्विवाद रूप से ठुमरी गायन की साम्राज्ञी उन्हें कहा जाता था, और अपने जीवन काल में बहुत से पुरस्कार और सम्मान उन्होंने अर्जित किए, जैसे भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार जो मिला था उन्हें 1966 में, साहित्य कला परिषद सम्मान, संगीत नाटक अकादमी सम्मान और केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी सम्मान भी। तो सुनते हैं उन्हीं की वो जादुई आवाज।
जब राम का है बिस्दारी राम
Ferlin Husky was an American country music singer who was equally adept at honky-tonk, ballads, spoken recitations, rockabilly and pop tunes. From 1948 to 1953, he recorded under the stage name Terry Preston. He also created and recorded as the comic outspoken hayseed character Simon Crumb. In 1950s and 60s, his hits include Gone and Wings of a Dove, each reaching number one on the country charts.
On the wings of a snow-white dove, he sends his pure, sweet love,
a sign from above.
Sign from above.
On the wings of a dove,
wings of a dove,
when Noah had drifted on the flood many days, he searched for land.
He searched for land
in various ways.
और दोस्तों, आज हम याद कर रहे हैं कल्पना चावला को, जो एक भारतीय अमरीकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन की विशेषज्ञ थी। कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना में मारे गए 7 यात्रियों वाले दल की वे सदस्य थीं। हरियाणा के करनाल शहर से नासा तक का लंबा सफर उन्होंने तय किया, और अंतिम मिशन में नाकाम रहने के बावजूद अपनी प्रतिभा और सपनों की उड़ान के बल पर उन्होंने ख्याति अर्जित की। उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान मिले, जैसे कांग्रेशनल अंतरिक्ष पदक, नासा अंतरिक्ष उड़ान पदक, नासा विशिष्ट पदक और प्रतिरक्षा विशिष्ट सेवा पदक।
स्टीवन गेटली वाज एन आयरिश pop singer, songwriter, actor, children's writer and dancer who, with Ronan Keating, was co-lead singer of the pop group Boyzone. All of Boyzone's studio albums during Gately's lifetime hit number one in the UK, their third being their most successful internationally. With Boyzone, Gately had a record-breaking 16 consecutive singles enter the top five of the UK singles chart. He performed for millions of fans globally. Stephen Gately played a key role in Boyzone's 1994 cover of Love Me For A Reason, acting as one of the group's co-lead vocalists alongside Ronan Keating. Here's the song. William Patrick Corgan Jr. is an American musician and songwriter who is the lead singer, primary songwriter, guitarist and sole permanent member of the Smashing Pumpkins, in addition to being the owner and promoter of National Wrestling Alliance. Formed by Corgan and guitarist James in Chicago, Illinois in 1988, the Smashing Pumpkins quickly gained steam with the addition of bassist Darcy Redsky and drummer Jimmy Chamberlain. Here's the song 1979 from the album Smashing Pumpkins.
दोस्तों, आज जयंती है ब्रिगेडियर राय सिंह यादव की, जो भारतीय सेना में अधिकारी थे। सन 1967 में नाथूला और चोला संघर्ष में अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने संघर्षों के दौरान अनुकरणीय साहस और नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके लिए उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। राय सिंह यादव को नाथूला के बाघ के रूप में भी जाना जाता है। जन्म हुआ था 17 मार्च 1925 को हरियाणा के कोसली में। उनके पिता का नाम राय साहब सिंह गणपत सिंह था, जो 1920 के दशक में ब्रिटिश भारतीय सेना में कार्यरत थे। उन्होंने अपनी शिक्षा कैम्ब्रिज किंग जॉर्ज मिलिट्री स्कूल जालंधर से हासिल की। सन 1962 के युद्ध के बाद चीन भारत की सीमा पर काफी हावी हो गया था। फिर 1967 में नाथूला पोस्ट पर चीन की सेना ने भारतीय सेना को जब पीछे धकेलने का प्रयास किया, तब उस समय लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह यादव, जो एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने चीनियों को ललकारा। आमने सामने की जंग हुई। कर्नल राय सिंह यादव के पेट में मशीन गन का एक बर्स्ट लगा और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन उन्होंने मोर्चा छोड़ा नहीं और चीनियों को पीछे हटने पर मजबूर किया, और इस कार्रवाई के बाद चीनी उस जगह से पीछे हट गए, और एक तरह से ये माना जाता है कि तब 1962 की हार का बदला लिया गया। असाधारण वीरता के लिए राय सिंह यादव को बहादुरी के दूसरे सबसे बड़े सम्मान महावीर चक्र से नवाजा गया था, और उनकी मृत्यु हुई थी ब्रिगेडियर पद से निवृत्ति के बाद 23 मार्च 2017 को। उनके जीवन और इस घटना पर आधारित एक फिल्म भी रिलीज हुई दोस्तों, जिसका नाम है पलटन, और उन्हीं की शौर्य गाथा पर आधारित है। आइए सुनते हैं उसी से ये गीत का छोटा सा अंश।
मैंने अपने गर्म लहू से वक्त के बर्फीले कागज पर एक पैगाम लिखा है, जिनके नाम लिखा है उन तक पहुंचा देना, उन तक पहुंचा देना मेरे मन की।
पुनीत Rajkumar is an Indian film actor, playback singer and producer who works primarily in Kannada cinema. He has been a lead actor in 27 films. As a child, he appeared in films featuring his father Rajkumar. Enjoy listening to this song from his movie.
और दोस्तों अब दीजिए हमें आज्ञा कार्यक्रम नहीं समाप्त करने की यानी मुझे और नीना अर्कल को आप हमें दोबारा सुनना चाहें तो लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट आज्ञा दीजिए
नमस्कार।